नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोता, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इन दिनों भजन संहिता नामक पुस्तक से अध्ययन करते हुए प्रभु की आशीषों को प्राप्त करते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मित्रों, आइए हम सब आगे बढ़ें और आज अपने अध्ययन को भजन संहिता 67 उसके 3 पद से आरंभ करें। आज का अध्ययन है भजन संहिता 67 उसका 3 पद से। आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 67 उसके 3 और 4 पद को पढ़ें। लिखा है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। यह अब्राहम को दी गई परमेश्वर की एक अद्भुत प्रतिज्ञा है, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1-3 पद में पढ़ते हैं। मैं तुझे सब जातियों में आशीष का कारण बनाऊंगा। यीशु जब पहली बार आया था तब उसने स्पष्ट कहा था कि उद्धार यहूदियों का होगा। यीशु जब दूसरी बार आएगा तब पृथ्वीवासियों का सबका मन परिवर्तन होगा। मेरे विचार में उद्धार का सबसे बड़ा समय भविष्य में होगा। इस युग में तो इस बात का होना संभव नहीं है, सहस्त्र वर्षीय राज्य तक यह संभव नहीं होगा। यशाया कहता है 66 अध्याय के 19 पद में, मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बच्चे हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तारशीशियों और धनुर्धारियों और पुलियों और लुदियों के पास और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीप व्यवसायियों के पास भेजूंगा और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। वह दिन आ रहा है जब दुनियावासी सब विश्वास करेंगे। आइए हम भजन संहिता 67 के 5 पद को पढ़ें। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? क्या यह कि हम इसराइल को उनके देश में लौटा लाएं? यह वास्तव में मूर्खता का काम होगा कि उन्हें उनके देश में लौटा लाने में रुचि रखें, परंतु यह मूर्खता नहीं होगी कि संपूर्ण संसार को उद्धार में लाया जाए। कलीसिया प्रचार करके राज्य की स्थापना नहीं कर पाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिसे हम रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसके 25 पद में पढ़ते हैं, यह अति स्पष्ट है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर बना रहेगा। कब तक? जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें। भजन संहिता 67 के 6 पद में लिखा है, भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। देखिए, पृथ्वी पर से पाप का श्राप जाता रहेगा। भजन संहिता 67 के 7 पद में लिखा है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। मैं एक ऐसी टिप्पणी करना चाहता हूं जिसे मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं, मिशन का मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? कोई कहेगा, सेवा का उद्देश्य है आत्मा बचाना। मैं तो कहूंगा कि आत्माएं बचाना सेवक का उद्देश्य नहीं है। यह सच है कि सेवा का परिणाम आत्माओं का उद्धार है, परंतु मुख्य उद्देश्य यह नहीं है। अब कोई और यह कहेगा, प्रभु यीशु की आज्ञा मानकर हमें दुनिया की छोर तक सुसमाचार सुनाना है, यह हमारे लिए आदेश है। हमें सर्वत्र सुसमाचार प्रचार करना है, हमें संपूर्ण पृथ्वी पर सुसमाचार फैलाना है। जी हाँ, यह सच है, परंतु मिशन का मुख्य उद्देश्य यह भी नहीं है। यह अति निकट है परंतु वास्तविक लक्ष्य नहीं है। मैं पद 5 और 7 का संदर्भ एक साथ देता हूं। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। तो मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद अर्थात स्तुति करें। सेवा का प्रधान लक्ष्य यही है, परमेश्वर का महिमान्वन। यह प्रत्येक सेवा कार्यक्रम का, प्रत्येक मसीही उपक्रम का वाहक है। वाहक परमेश्वर का महिमान्वन करे और उसके बाद जो होगा वह है सुसमाचार प्रचार और वचन का फैलाना कि मनुष्य का उद्धार हो। संपूर्ण उद्देश्य यह है कि परमेश्वर का महिमान्वन हो। मैं सोचने पर विवश हो जाता हूं कि क्या हम अपने लक्ष्य से चूक गए हैं। मैंने अपनी बाइबल शिक्षा में सीखा था, मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है परमेश्वर का महिमान्वयन और अनंत काल तक उसका आनंद लेना। मनुष्य के जीवन का पृथ्वी पर यही अर्थ है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना खाओ और खाली बर्तन छोड़ दो। क्या मनुष्य को बस यही करना है? जी नहीं, मनुष्य को परमेश्वर का महिमान्वयन करना है। हम वचन के प्रचार द्वारा उसका महिमान्वयन करते हैं, सुसमाचार सुनाकर हम उसका महिमान्वयन करते हैं, हम मनुष्य को उद्धार में लाते हैं तो हम उसका महिमान्वयन करते हैं। अतः मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर का महिमान्वयन करना। मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 67 समाप्त होता है। आइए हम भजन 68 में आए, जिसका विषय है मुक्ति का गीत जो राज्य लाता है। यह मुक्ति और विजय का गीत है। भजन संहिता 67 में हमने राज्य देखा था और इस भजन में हम राजा को उसकी महिमा और सामर्थ में देखते हैं। भजन संहिता 68 के एक पद में लिखा है, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। यह पद गिनती की पुस्तक 10 अध्याय के 35 के संदर्भ में है। इसराइल जब जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कूच करता था, तब मूसा कहता था, हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। यह दिन चर्चा आरंभ करने का कैसी अनुपम रीति है। इससे पूर्व का भजन भी एक गीत था और यह भजन भी एक गीत है, विजय और महिमा का गीत। आइए हम भजन संहिता 68 के 4 पद को पढ़ें। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। यहाँ भी हम देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर का महिमान्वयन करे और परमेश्वर उस दिन की ओर अग्रसर है जब संपूर्ण पृथ्वी उसका महिमान्वयन करेगी। मनुष्य आज परमेश्वर का महिमान्वयन नहीं करते हैं, वे उसका नाम व्यर्थ में लेते हैं। भजन संहिता 68 उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हों? न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय के 16 पद में दबोरा ने अपने भविष्यवाणी के गीत में यही इब्रानी शब्द काम में लिया था, तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालों के बीच क्यों बैठा रहा? वह रूबेन को संबोधित कर रही थी क्योंकि वह युद्ध में नहीं गया था। दोनों की स्थानों में यह शब्द उदासीन, निष्क्रिय, स्वार्थी स्वभाव को प्रकट करता है। इस भजन में भी इसका अर्थ यही है, इसराइल अनिश्चित और निष्क्रिय था और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी के। यहाँ कबूतरी बलि का पात्र थी और प्रभु यीशु का प्रतीक है। यह कैसा अनुपम चित्रण है। चाहे वे लापरवाह हो, चाहे वे निरुत्साह हो, प्रभु यीशु का आत्म बलिदान उन्हें ढांक लेगा। यह भजन स्वर्ग रोहन का भजन कहा जा सकता है क्योंकि हमारे पास एफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसके 8 पद में इसका संदर्भ है। वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। भजन संहिता 68 के 18 पद में हम पढ़ते हैं, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन सब हठीले मनुष्यों से भी भेंट ली जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। मेरे विचार में प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाते समय दो काम किए। पहला, वह अधोलोक में उपस्थित सब पवित्र जनों को साथ ले गया। परमेश्वर ने उनको कर्मों के आधार पर अब तक सुरक्षित रखा था और अब प्रभु यीशु ने उनकी मुक्ति का मूल्य चुका दिया था। दूसरा, उसने विश्वासियों को वरदान दिया जिसके द्वारा वह आज अपना काम करता है। उन मनुष्यों द्वारा जिन्हें उसने वरदान दिए हैं, सबके पास एक ही वरदान नहीं है, यह एक अति उत्तम पद है। भजन संहिता 68 उसके 21 और 22 पद में हम पढ़ते हैं, निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहरे सागर के तल से भी फेर ले आऊंगा। यह पद भविष्य में महिमा में विजय की चर्चा करती है। बाल भरी खोपड़ी अर्थात ख्रिस्त विरोधी, वह जो भी करेगा विफल ही होगा। परमेश्वर अपनी प्रजा को समुद्र की गहराइयों में से भी निकाल कर लाएगा। यह सब इसराइल का पुनरुद्धार है। भजन संहिता 68 उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं, वहां उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है, वहां यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत हैं, वहां जबुलून और नप्ताली के भी हाकिम हैं। ये पद इसराइल के वंशजों के बारे में है। कुछ लोगों का मानना है कि इंग्लैंड इसराइल के 10 खोए हुए गोत्र हैं। यह व्यर्थ की बात है। छोटा बिन्यामीन का अर्थ है बिन्यामीन का गोत्र, इसका अर्थ अन्य कुछ भी नहीं है। ध्यान दें कि छोटा बिन्यामीन का परमेश्वर महान है। भजन संहिता 68 उसके 35 पद में लिखा है, हे परमेश्वर तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है, इसराइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है, परमेश्वर धन्य है। हम भी छोटे हैं परंतु हमारा परमेश्वर महान है, वह हमें आवश्यक बल और सामर्थ प्रदान करता है, परमेश्वर धन्य है। मित्रों यहाँ पर भजन संहिता 68 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 69 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। यह एक महान मसीह संबंधित भजन है, यह भी दाऊद ही की रचना है और बेजोड़ है क्योंकि यह प्रभु यीशु के जीवन के उस समय का उल्लेख करता है जिसकी जानकारी हमें नहीं है। इस भजन को शोषनीम कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु तराई की शोषण और शारोन का गुलाब है, अर्थात वह पूर्ण रूपेण रूपवान है। नए नियम में भजन 22 के बाद यह सर्वाधिक संदर्भित भजन है। भजन 22 प्रभु यीशु की मृत्यु के संदर्भ में है तो भजन 69 प्रभु यीशु के जीवन की गाथा है। मैंने अपने अध्ययन काल में या उस समय भजन पर ध्यान दिया था और आज तक यह भजन मेरा सर्वप्रिय भजन है। जहां तक संदर्भों का प्रश्न है, भजन 22 नए नियम में सबसे ऊपर है और उसके बाद दूसरे स्थान पर है भजन 69। इसका संदर्भ यूहन्ना रचित सुसमाचार, रोमियो की पत्री, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लुका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तकों में दिया गया है। स्पष्ट कहें तो इस भजन के संदर्भ वास्तव में उद्धरण नहीं है। इस भजन को शाप का भजन कहते हैं क्योंकि पद 22 से 28 वास्तव में वैरी को दंड देने की प्रार्थना है, परंतु नए नियम के लेखकों ने इसका भी संदर्भ दिया है। यह भजन हमें प्रभु यीशु के अज्ञात बाल्यकाल और युवावस्था की जानकारी देते हैं जिसके बारे में सुसमाचार वृत्तांतों में कुछ नहीं है। डॉक्टर लुका हमारे प्रभु यीशु के जीवन की एक घटना का उल्लेख करता है जब वह 12 वर्ष का था। इसके बाद 30 वर्ष की आयु तक का उसका कोई भी विवरण हमें नहीं दिया गया है। प्रभु यीशु के जीवन के इस समय के बारे में यह भजन कुछ जानकारियां हमें देता है। हम यहाँ नासरत में प्रभु यीशु के अंधकार के पल और क्रूस का समय देखते हैं। उसकी यह प्रार्थना वास्तव में न्याय की मांग है। यह भजन उसके अपमान और त्याग का भजन है। हम नासरत से आरंभ करते हैं और एक बालक, किशोर और युवक के दिल का रुदन सुनते हैं। आइए हम भजन संहिता 69 उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। देखिए उसने कैसा कष्ट उठाया। क्रूस पर उसके कष्ट अत्यंत पीड़ादायक थे, परंतु इस पार्थिव जीवन में उसने जो कष्ट उठाए वे लगभग असहनीय थे। मेरे विचार में यदि हम पर ऐसे कष्ट आते तो हम मर ही जाते। मित्रों हमारे प्रभु के क्रूस के अंतिम 3 घंटे वह परमेश्वर का मेमना बन गया जो जगत के पाप उठाकर साथ ले जाता है। उस समय वह हमारे लिए पाप बन गया। यद्यपि उसने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए जैसा हम देखेंगे, उनमें न तो प्रशंसा है और न ही उद्धारक मूल्य है। जहां तक हमारा प्रश्न है, उसने स्वेच्छा से अपमान उठाना उचित जाना। प्रभु यीशु की मानवीय सीमा उसका स्वयं का सीमा बंधन था। आप और मैं अपने ज्ञान से अधिक जानकारी चाहते हैं। हम अपना ज्ञान और बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं। इसके विपरीत प्रभु यीशु ने जब देह धारण किया तो स्वयं को सीमित किया, दीन बनाया और उस दशा में वह पुकारता है। भजन संहिता 69 उसके 2 पद में लिखा है, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते, मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूब जाता हूँ। कष्टों का यह सैलाब तब आरंभ हुआ जब प्रभु यीशु ने गौशाला में जन्म लिया। गौशाला में जन्म लेना अच्छा ही था, क्योंकि गायों और भेड़ों की अपेक्षा वहां अन्य किसी को कुछ नहीं पता चला कि उस रात क्या हुआ। वे सराय में उपस्थित मनुष्यों से उत्तम थे, परंतु गौशाला में उसने कष्टों का जीवन आरंभ किया। अब हम उसके लालन पालन के स्थान नासरत में जाएंगे। लिखा है भजन संहिता 69 उसके 3 पद में, मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया, अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। उन 30 वर्षों में उसकी आंखें रोने के कारण लाल भी हो जाती थी। तब हम भजन 69 के 4 पद में पढ़ते हैं, जो आग कारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। इस पद का संदर्भ यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 25 पद से है। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ वैर किया। प्रभु यीशु ने इस पद को स्वयं से जोड़ा था। प्रभु यीशु के वैरी आकरण ही उससे घृणा करते थे, अर्थात उनका प्रभु यीशु से रुष्ट होना अनुचित था। रोमियो के पत्र 3 अध्याय के 24 पद में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंतमेन धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंतमेन धर्मी ठहराए जाने का अर्थ वही है जो व्यर्थ वैर करने का है। प्रभु ने मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं देखी। प्रभु ने यह नहीं कहा, वह पुरुष कैसा भला है, मैं उसे धर्मी ठहराता हूँ। इसकी अपेक्षा उसने कहा, वह बेचारा भटका हुआ पापी है, उसने मुझे मेरी योग्यता से रहित धर्मी ठहराया। अब यह भजन कहता है कि उन्होंने आकरण ही यीशु से बैर किया कि मैं आकरण धर्मी ठहराया जाऊं। यह कैसा अद्भुत सत्य है। भजन संहिता 69 के 5 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरी मूर्ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं है। जी हाँ, यह पद प्रभु से कैसे संबंधित है। आपको स्मरण रखना है कि वह इस पृथ्वी पर मानव रूप में आया था। वह पवित्र, शुद्ध, हानि रहित, पापियों से पृथक था, परंतु क्रूस पर वह हमारे लिए पाप बन गया। वह गतसमनी की वाटिका में इसी से बचना चाहता था। उसने प्रार्थना की, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। कौन सा कटोरा? पाप का कटोरा जो आपके और मेरे पापों से भरा हुआ पड़ा था। उस पर डाले गए पाप भयानक थे। हमारे लिए तो वे स्वाभाविक हैं, परंतु वह पवित्र था, इसलिए उसका कष्ट और भी भयानक था। भजन संहिता 69 उसके 6-7 पद में लिखा है, हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। हे इसराइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला न हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढंपा है। उसके लिए अपमान और लज्जा सहन करने के 2 कारण थे। पहला, वे उसे इसलिए घृणा करते थे कि वह जो था सो था। इसी प्रकार पापी धर्मी से घृणा करता है। दूसरा, वह इस पृथ्वी पर दीनहीन और विनम्रता का स्थान लेने के लिए आया था। भजन संहिता 69 के 8 पद में लिखा है, मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ। यह पद मुझे अनेक जानकारियां देता है जो मैं अन्यथा नहीं जान पाता। मरियम की अन्य संतान भी थी, जिनका उल्लेख सुसमाचार वृतांत में हमें मिलता है। एक दिन उसके पुत्र यहूदा और योसेस ने कहा होगा, माँ, हमने बाहर किसी से कहते हुए सुना है कि यीशु तेरा अपना पुत्र नहीं है। वे कह रहे थे कि उसके पिता के बारे में कोई नहीं जानता, वह अपनी माता की संतानों में परदेशी था। आपके विचार में क्या उसका परिवार उसके लिए प्रसन्नता का स्थान था? संभवतः अत्यधिक दुख का स्थान। देखिए, मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ। यूसुफ उसका पिता नहीं था, उसके भाई बहन सौतेले थे। इस पद में यीशु का कुंवारी से जन्म स्पष्ट है। भजन संहिता 69:9 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। प्रभु यीशु ने देखा कि मंदिर में लोग बैल, भेड़ और कबूतर बेच रहे थे। वहां सर्राफ भी अपनी दुकान लगाए हुए बैठे थे। उसने रस्सियों से एक कोड़ा बनाया और सबको बाहर किया। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:16-17 पद में देखते हैं। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। ओह, ये लोग धर्मी जन थे और दीमकों की नाय अत्यधिक व्यस्त रहते थे। सच तो यह है कि उनके द्वारा की गई हानि दीमकों से भी कम नहीं थी। वे अनुष्ठानों में व्यस्त तो थे, परंतु परमेश्वर से बहुत दूर थे। भजन संहिता 69:10 पद में हम पढ़ते हैं, जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई। उसके उपवास पर और रोने पर वे उसका ठट्ठा करके कहते थे कि वह ढोंगी है। तब हम आगे देखते हैं भजन संहिता 69:11 पद में, तब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। यह दृष्टांत क्या था? कि वह अवैध संतान है। आप आज के शब्द की कल्पना कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यह निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। किस प्रकार उसने अपने जीवन को व्यतीत किया कठिनाइयों के बीच में, मनुष्य बनना ही नहीं लेकिन साथ में लोगों की अवहेलना को ग्रहण करना, बर्दाश्त करना बहुत कठिन है। हो सकता है कि आज आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको तकलीफ पहुंचा रही हैं। आप निराश मत हो, प्रभु के पास आए, वह आपकी सहायता करेंगे। प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। आशा है कि आज के इस वचन के द्वारा आपने फिर से एक बार परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी